खुशी में मुस्कुराने की अदा, खुशी में मुस्कुराने की अदा हर किसी को फिदा कर देती है और जिंदगी के गमगीन लम्हों को हमसे जुदा कर देती है। रूखा रूखा गमों में डूबा डूबा, हताश उदास निराश चेहरा ना कोई अपना बनाना चाहता है ना दूसरों का देखना चाहता है। क्या बात है कि आज का इंसान जीवन की खुशी नहीं ढूंढ पा रहा। आज उसे खुशी के लाले क्यों पड़ गए हैं? सबसे बुद्धिमान कहलाने वाला इंसान जीवन में आनंद क्या चीज है इसे उसे समझ ही नहीं है, उसे उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे जीवन में खुशियों की, कैसे जीवन में खुशियों की बहार आ जाए, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें अगर हम जीवन में डिवेलप करें तो हम हाईली हैप्पी पीपल बन सकते हैं। तो आइए अभी आज की इस प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत सुंदर कहावत है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और गम जैसा कोई रोग नहीं है। हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ। दुनिया में अगर तराजू में एक पलड़े में कुछ चीज रखे तो दूसरे पलड़े में अगर खुशी एक पलड़े में खुशी रखे दूसरे पलड़े में उसके बराबर रखने लायक चीज ना कोई बनी है ना बन सकती है। अगर हम जिंदगी में हर पल हर क्षण उत्सव का माहौल बनाना चाहते हैं, हर पल का आनंद उठाना चाहते हैं, तो बहुत सुंदर बात कही है, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज सेलिब्रेशन व्हेन आई एम हैप्पी। मुझे खुश रहना होगा। जब मैं खुश रहता हूं प्रफुल्लित रहता हूं तब मेरी जिंदगी का हर पल एक उत्सव बन जाता है। खुशी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा खजाना है जिसे काले चोर भी चुरा के नहीं ले जा सकते। अगर खुशी जैसी पर्सनैलिटी दुनिया में नहीं हो सकती, अगर आपके जीवन में बड़ी बड़ी डिग्रियां आपने प्राप्त कर ली लेकिन चेहरे में खुशी नहीं, कोई फायदा नहीं है। अगर आपका चेहरा कितना भी सुंदर है लेकिन जीवन में खुशी नहीं, नो यूज। आपने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया लेकिन खुशी गंवा दी, कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस लेक्चर से हम जानेंगे कि क्या कारण है, क्या भूल हमसे हो गई, क्या कमी हम में है जो इस खुशी के वरदान से आज हम वंचित हैं। ए स्माइल कॉस्ट जीरो बट मेक्स वन इंटू हीरो। अगर आपने जीवन के हीरो बनना है तो एक मुस्कुराहट, एक मुस्कान अपने जीवन में आप ले आए, हीरो बनना बड़ी बात नहीं है। खुशी एक ऐसी चीज है कि आजकल तो लोग अपने बच्चों का नाम भी खुशी रखते हैं। सवेरे मैंने एक फरीदाबाद की एक छोटी कन्या से मिला, सेकंड क्लास में वो पढ़ती है, पता नहीं यहां बैठी या नहीं बैठी, उसका नाम भी खुशी है। एक बच्चे से मैं मिला, उसका नाम मुस्कान है। पंजाब में मैं जाता हूं तो वहां एक आदमी सरदार जी से मिला, कहता जी मेरा नाम हैप्पी सिंह है। तो लोग हैप्पी सिंह, मुस्कान, खुशी, एक हमारा रिश्तेदार था उसका नाम खुशी राम था। तो नाम अगर खुशी हो, मुस्कान हो, लेकिन चेहरे पे उदासी हो, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो कैसे मुस्कुराहट हमारे जीवन में आए, मुस्कुराहट जो प्रभु का वरदान है और बिना पैसों की सौगात है, जो आप किसी को भी दे सकते हैं और उसके बदले में उसकी दुआएं और वो सारे सुख जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकते, हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी चीज है मुस्कान। स्माइल इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ इज बैटरी। व्हेन एवर यू स्माइल द बैटरी गेट्स चार्ज्ड एंड ब्यूटीफुल डे इज एक्टिवेटेड। अगर आपने अपने दिन को अच्छा बनाना है, खुशनुमा बनाना है, तो सवेरे ही अपनी बैटरी को चार्ज कर लीजिए एक स्माइल के साथ। किसी ने बहुत सुंदर कहा, स्माइल इज ए कर्व दैट मेक्स मैनी थिंग स्ट्रेट। एक ऐसा कर्व है जो बहुत सी चीजों को सीधा कर देता है। जब आप स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सारी दुनिया आपके साथ मुस्कुराती है। लेकिन जब आप रोते हैं, कोई आपके साथ नहीं रोएगा, आपको अकेले रोना पड़ेगा। जब हां मुस्कुराहट है, वहां सारी की सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मुस्कुराहट एक ऐसी ड्रेस है, एक ऐसी पोशाक है जो आप किसी भी मौसम में पहन सकते हैं। जब व्यक्ति खुशी होता खुश रहता है तो वो कहता है वाह रे मैं वाह मेरा भाग्य, और जब वो उदास होता है तो कहता है हाय रे मैं हाय मेरी किस्मत। हाय हाय के गीत जब निकलते हैं वो खुशी गायब होने का ही इंडिकेशन है। मुरझाए हुए गुलों को लबों से लगाता नहीं कोई और मायूस चेहरों के नजदीक आता नहीं कोई। चेहरे की शान है मुस्कान, चेहरे की शान है मुस्कान, मुस्कुराते हैं जो उन्हें देख के मुस्कुराती है दुनिया, इसलिए जी भर के मुस्कुराइए और सबको खुशियां लुटाइए। हैप्पीनेस क्या चीज है? हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, ये तो एक जर्नी का नाम है, एक यात्रा का नाम है। क्यों, ये वो चीज नहीं है कि आपको कोई मिल जाए, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं तब आप हैप्पी होंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं उसकी जर्नी में थ्रू आउट, वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस कोई कल आने वाली चीज नहीं है कि कल फ्यूचर में आपको मिलेगी, ये अभी आपको प्राप्त हो सकती है। हैप्पीनेस कोई डिपेंडेंसी का नाम नहीं है, इट इज ए डिसीजन। ये हमारी जिंदगी का एक फैसला है जो आज से आप सबको लेना है कि यस आई कैन रिमेन हैप्पी एट एनी सिचुएशन, कुछ भी हो जाए दुनिया में लेकिन मैं खुश रह सकता हूं। ये प्रण ये संकल्प आपको यहां से लेकर जाना है। व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ अवर लाइफ? हम जो कुछ करते हैं चाहे ठीक करते हैं या गलत करते हैं किसके लिए करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो आपका जवाब मिलेगा कि हम इस चीज को पाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन उससे भी आगे मैं पूछूं कि वो भी आप क्यों कर रहे हैं, तो एंड में आपका एक ही आंसर आएगा कि हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं, हम अपनी हेल्थ भी अच्छी रख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं, यही हमारे जीवन का अल्टीमेट एम है। एक बार एक मस्त फकीर एक पेड़ के नीचे आराम से खुशी मौज से बैठा हुआ था। एक रास्ते चलते हुए राहगीर को संकल्प आया कि इसको मैं थोड़ा कुछ सिखाऊं, कुछ काम करने की इसको मोटिवेशन दूं। तो वो फकीर के पास जाता है और कहता है कि महात्मा जी आप आराम से बैठे हो, क्यों ना कोई काम धंधा कर लो। कहता क्या काम करूं? कहते आप ऐसा कीजिए, आजकल आम का सीजन है तो आप आम की एक टोकरी रख लीजिए और आम बेचना स्टार्ट कर दीजिए। उसने कहा फिर क्या होगा? अरे भाई तुम एक वीक में आपको काफी प्रॉफिट हो जाएगा और आप एक के बजाय 5-7 टोकरियां रख लेना। कहता फिर क्या होगा? कहता एक महीने के बाद तुम्हें और प्रॉफिट होगा, तुम अपनी दुकान खोल लेना। कहता अच्छा फिर क्या होगा? अरे भाई तुम समझते नहीं हो, तुम्हें और कमाई होगी और तुम उसके बाद एक नौकर अपने पास रख लेना। कहता नौकर भी रख लूंगा फिर क्या होगा? कहता फिर तुम आराम से अपने दुकान के गल्ले पे बैठ के आराम से खुशी मौज से बैठा करना। वो कहता अच्छा ये तो मैं पहले खुशी मौज से बैठा हूं, इतना सब करने के बाद भी अगर खुशी ही मिलेगी वो तो मैं पहले ही हूं। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि जो कुछ हम करते हैं सारी उधेड़बुन सारी मेहनत, कोई कहे मैं 18 घंटे काम करता हूं, 20 घंटे काम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, आखिर किसके लिए? खुशी प्राप्त करने के लिए ही तो हम सब कुछ करते हैं। कोई व्यक्ति गलत काम भी करता है, एक चोर चोरी भी कर रहा है, एक कोई भी गलत काम किया जा रहा है, उसके पीछे भी उस व्यक्ति का पर्पस यही है कि आखिर मुझे खुशी मिले, हालांकि वो एक रॉन्ग मेथड से हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहता है। एक है टेम्परेरी हैप्पीनेस, एक है परमानेंट हैप्पीनेस। टेम्परेरी हैप्पीनेस मान लो आप यूथ हैं, आप में ताकत है, बस में आप चढ़ रहे हैं, काफी भीड़ है, आपने धक्का मुक्की करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आगे घुस गए और सीट मिल गई, तो आपको क्या मिलेगी? हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन वो टेम्परेरी हैप्पीनेस होगी, आपने ताकत से दूसरे की सीट छीन के अपनी सीट बनाई। और एक है असली वाली हैप्पीनेस, मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क पार करा दी, आपका फर्ज तो नहीं बनता था ना, आपको ड्यूटी लगा रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी आपने एक नेकी का काम किया तो व्यक्ति आपको दुआएं देगा, वो दुआएं आपको परमानेंट हैप्पी रहने में मदद करेंगी। अब हम जानेंगे कि हैप्पीनेस है क्या, हैप्पीनेस कहां किसको जाता है, हैप्पीनेस कहां से आती है, क्या हैप्पीनेस किसी भौतिक चीज का नाम है, क्या कोई बाह्य साधन प्राप्त करने का नाम हैप्पीनेस है, ये चीज मुझे मिल जाए, ये प्राप्ति मुझे हो जाए, ये साधन मेरे घर में आ जाए, 1 लाख की जॉब मुझे मिल जाए या मेरी प्रमोशन हो जाए तो मैं हैप्पी रहूंगा, कि हैप्पी कुछ और चीज है, हैप्पीनेस है क्या। प्यारे भाइयों और बहनों, हैप्पीनेस कोई भौतिक कोई मटेरियल चीज का नाम नहीं है, हैप्पीनेस कोई भौतिक चीज है ही नहीं तो ये भौतिक वस्तुओं से मिल कैसे सकती है। मटेरियल चीज नॉन मटेरियल मटेरियल चीजों से कैसे मिल सकती है, ये सोचने का विषय है। हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम विद इन, ये आपके अंदर से ही आती है, आपके मन में खुशी का असीम खजाना छिपा हुआ है, जरूरत है उस खजाने को बाहर निकालने की, आपके अंदर ही खुशी का भंडार है, खुशी कोई बाहर की चीजों में नहीं है, खुशी कोई मनी मैटर मटेरियल में नहीं है, खुशी क्या है, इट ग्रोज इन ए पीसफुल एंड पॉजिटिव माइंड, जो एक शांत चित व्यक्ति है पॉजिटिव रहता है उसके अंदर खुशी अपने आप वृद्धि को पाती है, और ये खुशी मरती कहां पर है, जिसके मन में नेगेटिविटी है, जिसके मन में क्रिटिसिज्म है, जिसके अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, वहां खुशी अपने आप ऑटोमेटिकली डाई। हैप्पीनेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस नॉट मैटर ऑफ चांस। ये नहीं है कि भगवान आपको लॉटरी लग गई तो लग गई, खुश रहना है तो रह गए, नहीं तो नहीं रहे, ऐसी वाली बात नहीं है। खुशी कभी खुशी कभी गम, वो वाली बात नहीं है, ये आपकी चॉइस है, यू आर द इंचार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस के मालक आप हैं, आपकी हैप्पीनेस आपके सिवाय कोई और छीन नहीं सकता, हैप्पीनेस आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आपके घर में चोर आए और आपकी प्रॉपर्टी छीन कर ले जाने लगे, क्या आप उसको अलाउ करेंगे? तो वैसे ही कोई सर्कमस्टांसिस कोई व्यक्ति आए आपकी इंसल्ट करके चला जाए और आपकी हैप्पीनेस रूपी प्रॉपर्टी को छीन के ले जाए तो आप उसको ले जाने देंगे? नहीं, आप ये सोचिए कि हैप्पीनेस मेरी चीज है, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत व्यवहार करके उल्टी सीधी बात करके या मेरे को घाटा पहुंचा के मेरी खुशी छीन रहा है, मैं इसे इसकी परमिशन नहीं दूंगा, मेरे पास वो ताकत है खुशी को अपने पास रखने की, या कोई भी व्यक्ति मेरी खुशी छीन के ले जाए, वो सारी चॉइस मेरे पास है। एक बार देवताओं की एक बड़ी गुप्त मीटिंग हुई और सभी देवताओं ने उसमें विचार किया कि ये जो खुशी रूपी खजाना है, द प्रॉपर्टी ऑफ हैप्पीनेस, इसको कहां पर छिपा कर रखा जाए ताकि मृत्यु लोक के प्राणी इस तक ना पहुंच सके। तो एक देवता ने सलाह दी कि खुशी को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में छिपा दिया जाए ताकि आदमी वहां पहुंच ना सके। लेकिन दूसरा देवता खड़ा हो गया, कहने लगा आज का इंसान बहुत चालाक है, उसने माउंट एवरेस्ट पे भी अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया है, वो वहां से भी उसको ढूंढ के ले आएगा। तीसरे देवता ने सलाह दी कि हैप्पीनेस को समुद्र की सबसे गहरी जगह पे छिपा के रख दें। तो एक और देवता ने इसको खारिज कर दिया, कहता नहीं, आजकल के इंसान ने पनडुब्बियां बना रखी हैं, उस समुद्र के सबसे नीचे बॉटम में भी चला जाता है, वहां से भी सर्च करके ले आएगा। अब क्या किया जाए? एक देवता ने सलाह दी जिसको सबने पसंद कर लिया, उसने कहा कि खुशी को कहीं छिपाने की जरूरत नहीं है, उसको इंसान के मन में छिपा दो और इंसान सारी उम्र बाहर की चकाचौंध में उसे ढूंढता रहेगा, कभी भी ये कोशिश नहीं करेगा कि खुशी मेरे अंदर ही है। और ये बात 100% सच सिद्ध हुई। आज आप देखिए हर इंसान खुशी को होटल में, क्लबों में, मैरिज में, बाजार में, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनने में, चारों तरफ खुशी को ढूंढता जा रहा है, कभी ये कोशिश नहीं करता कि खुशी तो उसके अंदर ही है। कभी भी वो कोशिश नहीं करता। और खुशी हमारी खुराक है, बिना हैप्पीनेस के हम नहीं रह सकते। जैसे बॉडी की खुराक क्या है, रोटी, उसी तरह हमारी आत्मा की, हमारे मन की खुराक खुशी है। जब खुशी अंदर से नहीं मिलती इंसान को, तो फिर उसको बाहर की खुशी वो ढूंढने लगता है, बाहर की चकाचौंध से, मनी, मैटर, मटेरियल, व्यक्ति, वस्तु, वैभव में जाकर खुशी ढूंढने लगता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड शूज पहनेगा, ताकि लोग कहें कि आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। जो मैं नहीं हूं, लोग मुझे वो समझें और मेरी झूठी तारीफ करें, तब हमें खुशी मिलती है। क्योंकि हमें खुशी तो चाहिए, अंदर खुशी है नहीं। जब हमारी कोई झूठी प्रशंसा करता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है कि ये व्यक्ति है मेरा दोस्त, जो मुझे पहचानता है, जो मेरी वैल्यू रखता है। लेकिन वो असली वाली खुशी नहीं है, वो नकली वाली खुशी है। जो दूसरे ने तारीफ की तो हम गुब्बारा बनकर उड़ने लगे, दूसरे ने क्रिटिसाइज किया तो हमें लगा कि मैं तो बड़ा बेकार का आदमी हूं, मेरे में तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। दूसरों की ओपिनियन आपकी हैप्पीनेस को ना छीने। इस दुनिया में दो तरह के कर्म हैं, एक कर्म है प्लेजर ओरिएंटेड, एक है हैप्पीनेस ओरिएंटेड। प्लेजर ओरिएंटेड एक्शन वो हैं जो हम कर्म करते हुए जॉय की फीलिंग करते हैं, उसको हम प्लेजर कहते हैं। मान लो आपने आइसक्रीम खाई, अपने दोस्त के साथ आप किसी पिकनिक स्थान पर घूमने चले गए, आपने टीवी में बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम देखा, जब आप आइसक्रीम खा रहे हैं आपको खुशी मिल रही है, जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं आपको खुशी मिल रही है, लेकिन अब किसी और चीज खानी पड़ेगी। आइसक्रीम खाते खाते तो हैप्पी हैं, वो खत्म हो गई, अब क्या करें, तो हैप्पीनेस गायब। वो टेम्परेरी, उसको प्लेजर कहते हैं, वो असली वाली हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस मीन्स वो कर्म जो हम कर्म करने के बाद भी हमें खुशी दिलाते हों, वो कर्म असली में हैप्पीनेस वाले हैं। आपने किसी का भला कर दिया, किसी की मदद कर दी, किसी के बारे में कुछ अच्छा काम कर लिया, वो आपको बाद में भी हैप्पीनेस देगा। टेम्परेरी हैप्पीनेस कुछ साधनों, कुछ प्राप्तियों के ऊपर टिकी हुई है। ये मुझे मिल गया, वो मिल गया तो मैं खुश हूं, नहीं मिला तो नाराज हूं। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस का मतलब, मिले तब भी खुश, ना मिले तो उससे भी ज्यादा खुश। दिवाली हो तब भी ठीक, दिवाला निकल जाए तो उससे भी ज्यादा ठीक। वो है परमानेंट हैप्पीनेस। वो कहां से आती है? एक बार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल कौन सा था, व्हाट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो डॉक्टर कलाम से जब ये पूछा गया तो लोगों ने कहा कि आप ही बताइए। तो लोगों ने कहा, क्या वो पल जिस दिन आपको भारत रत्न से नवाजा गया था, क्या वो समय जब आपको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, या वो घड़ी जब आपने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, कौन सा पल था जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली? तो डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया होगा? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया कि मुझे जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब मैं DRDO में था और हमने लाइट, जो पोलियो के मरीज होते थे उनके लिए हमने लाइट वेट कैलिपर्स का निर्माण किया। पहले वो 4 किलो के होते थे और हमने एक ऐसी मैटर लगाई कि वो 400 ग्राम के हो गए। जब वो कैलिपर एक पोलियो से ग्रस्त बच्चे को पहनाए गए, उस बच्चे की मुस्कान ने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी। दिस इज द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स टू गिव समथिंग टू अदर्स। हम लेने में खुशी समझते हैं कि मुझे कुछ मिल गया तो मैं खुश रहूं, वो खुशी नहीं है। खुशी है जब आप किसी को कुछ दो, अपना त्याग करके भी दो, वो आपको सच्ची हैप्पीनेस दिलाएगा। अब हम बात करेंगे कि खुशी हमारे जीवन से दूर क्यों हो रही है। वास्तव में आज हम उन राहों पे चल रहे हैं, उन रास्तों पे चल रहे हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है। हम अपना रास्ता भूल चुके हैं। भौतिकता की अंधी दौड़ में हम चल रहे हैं और हमें कहां पहुंचना है इसकी समझ हमें नहीं रही। पहला कारण है हमारी हैप्पीनेस गायब होने का, हमारी मटेरियलिस्टिक आउटलुक। हम सोचते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जैसे हो तैसे हो, मेरे पास पैसे हो, बस कैसे ना करके मैं पैसे बना लूं, बड़ी सी कोठी बना लूं, मेरे पास आलीशान बंगला गाड़ी सब आ जाए, फिर मैं खुश रहूं। लेकिन हैप्पीनेस आपकी वेल्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है तो आप हैप्पी हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे अमीर व्यक्ति खुश होते, लेकिन खुश हैं, और गरीब व्यक्ति तो सबसे ज्यादा दुखी होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अमीरों को तो दिन में भी नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा उनको रात को तो क्या दिन को तो क्या रात को भी नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेके वो सोते हैं। इसका मतलब हैप्पीनेस वेल्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चिल्ड्रन आर द बेस्ट एग्जाम्पल। आप छोटे बच्चों को देखिए, सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। उनके पास कोई बैंक बैलेंस है? नहीं है, लेकिन दे आर हैप्पी। कागज के नोटों के लिए इंसान नींद और चैन गंवा रहा है, खून सुखा रहा है, दौलत शोहरत शान शौकत पाई, मगर नतीजे में खुशी गंवाई तो क्या फायदा। इसलिए हर इंसान को इन बेशकीमती मुस्कानों की कीमत को समझना चाहिए, जिन्हें बेशुमार अशर्फियों से भी नहीं खरीद सकते। मनी इज नॉट द एंड बट वन ऑफ द मीन्स टू अचीव द एंड विच इज हैप्पीनेस। एंड मीन्स डेस्टिनेशन। मनी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा उद्देश्य एंड है हैप्पीनेस को प्राप्त करना, और मनी केवल वन ऑफ द मीन्स टू अचीव दैट एंड, एक साधन है जिससे हम हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं, और ये ऐसा साधन है जो हमें गारंटी नहीं देता हैप्पीनेस की, और एक अच्छा साधन भी नहीं है हैप्पीनेस को प्राप्त करने का। बिकॉज द पोजेशन ऑफ मनी इज नो गारंटी ऑफ हैप्पीनेस। आगे बताया है कि अगर खुशी पैसे से मिलने वाली चीज होती तो किसी भी दुकान के पास जाके, किसी स्टोर के में जाके आप हैप्पीनेस को परचेज कर सकते थे, आप इसको बेच सकते थे, आप इसकी बार्गेनिंग कर सकते थे। हैप्पीनेस हैज नो प्राइस टैग, इट डजंट डिपेंड अपॉन योर रिचनेस। इसके लिए पर्स की रिचनेस नहीं चाहिए, इसमें चाहिए रिचनेस ऑफ योर माइंड। जिसका माइंड रिच है, जिसके माइंड में अच्छे विचार चलते हैं, वही व्यक्ति हैप्पी रह सकता है। आज हमने क्या किया, अपने जीवन के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश की? अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश करें तो हैप्पीनेस जीवन में आ सकती है। बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया है कि मनी हमें क्या क्या दिला सकता है। विद द हेल्प ऑफ मनी हम एक बहुत अच्छा बंगला बना सकते हैं, लेकिन वो बंगला हैप्पी होम नहीं बन सकता जब तक कि हमारा माइंड पॉजिटिव ना हो। पैसे के दम पे हम एंटरटेनमेंट के लॉट्स ऑफ साधन चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन वो चीजें हमें रियल जॉय नहीं दे सकती। पैसे से हम बढ़िया से बढ़िया बेड अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन उस बेड पे बैठे आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही, नो वन नोज। पैसे के बल पे आप बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विजडम नहीं। पैसे से नेम एंड फेम मिल सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। पैसे से आप मेडिसिन खरीद सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन हेल्थ मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। पैसे से आप हाई सिक्योरिटी अपने आगे पीछे ब्लैक कमांडो लेके चल सकते हो, लेकिन उनसे आपको प्रोटेक्शन सेफ्टी मिलती है या नहीं मिलती, ये किसी और चीज पे डिपेंड करती है। हो सकता है आपके साथ चलने वाले बॉडीगार्ड ही आपको ऊपर पहुंचा दें, उनसे ही डर लगे जाए। हम ये नहीं कहते कि पैसा गलत है, पैसा तो बहुत जरूरी चीज है, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता। बट द ग्रीड फॉर मनी इज इविल, नॉट द मनी इटसेल्फ, क्योंकि ग्रीड ड्राइव्स पीपल टू यूज डिसऑनेस्ट इमोरल एंड इवन क्रिमिनल मेथड्स टू अक्वायर द मनी। हम गलत तरीके अपना लेते हैं जब ग्रीड पैदा होती है, और वो सब दुख का कारण है। बिग मनी विदाउट गुड करेक्टर इन्फ्लेट्स मन्स ईगो एंड प्रमोट्स इमोरलिटी एंड रॉन्ग लाइफस्टाइल। अगर करैक्टर ठीक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर करैक्टर, योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, योर वे ऑफ थिंकिंग, अगर वो ठीक नहीं है, पैसा आ गया वो ईगो पैदा करेगा और लॉट ऑफ ट्रबल्स सोसाइटी में आएंगी। सेकेंड कारण खुशी गायब होने का है, आजकल की भागम भाग की जिंदगी, हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किसी को पता नहीं, सब भाग रहे हैं इसलिए मुझे भी भागना है, किसी के पास दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है, माँ बाप के पास बच्चों को टाइम देने के लिए, बच्चों से प्यार देने का टाइम नहीं है, सब भाग रहे हैं, पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी हो गए हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी का मतलब है फास्ट लाइफ, फास्ट रिजल्ट हमें चाहिए, हर चीज फास्ट फास्ट करना चाहते हैं, इसलिए कहा फास्ट लाइफ प्लस फास्ट फूड इक्वल टू फास्ट डेथ। ये दो कारण आज लोगों की जल्दी जल्दी ऊपर जाने के बन रहे हैं और इतने भाग रहे हैं। एक ने तो भगवान से प्रेयर भी कर दी, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप, वहां भी धीरज चाहिए लेकिन जल्दी जल्दी धीरज दे दो। तो ये आजकल की हमारी जिंदगी हो गई है। अब आप अपने आप से पूछिए कि मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा हूं, मैं क्यों भाग रहा हूं, क्या ये चीजें मेरे साथ चलने वाली हैं, मेरी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्यों मैं इस धरती पे आया हूं, क्या मैं वो कर रहा हूं जिसके लिए यहां भेजा गया हूं या केवल भागने के लिए यहां आया हूं। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। तीसरा कारण खुशी गायब होने का समस्याएं। समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं कि हर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ट्रबल आती रहती है। लेकिन आज के युग में अगर समस्या नहीं आ रही, प्रॉब्लम नहीं आ रही, दैट मीन्स हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ करता है व्यक्ति उसी के पास ही समस्या आती है। समस्या से हमें घबराना नहीं है और प्रॉब्लम को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, प्रॉब्लम को से डिटैच हो जाना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। समस्या होते हुए भी समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव हो, वो कला हमें अपने में डेवलप करनी है। समस्याएं हमारे लिए एक टेस्ट है, एक पेपर है और हमें विद हैप्पीनेस इस पेपर को पास करना है। ये लक्ष्य रखना है कि ये समस्या हमें इसलिए आई है क्योंकि भगवान हमारा टेस्ट लेना चाहता है। जिसे वो देना चाहता है उसी को अजमाता है, जिसे वो देना चाहता है उसी को अजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। वो हमें देना चाहता है इसलिए समस्या उसने हमें एक टेस्ट के रूप में दे दी, हमें उसे चैलेंज के रूप में लेना है, उससे घबराना नहीं है और उसके प्रति अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है। एक बहुत बड़ा सेठ था जिसका बिजनेस में दिवाला निकल गया, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था। लोगों ने उससे कारण पूछा तो वो कहने लगा, जब मैंने यहां आया था, शहर में आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास पहने हुए कपड़े तो हैं, मैंने फैक्ट्री रची थी, दोबारा से फैक्ट्री रच लूंगा। कितना सुंदर एटीट्यूड है उस व्यक्ति का, कहता पहले भी बनाई थी, दोबारा से बना लूंगा, मेरे पास था क्या, दोबारा से कर लूंगा। वो व्यक्ति घबरा नहीं रहा था, समस्या के अधीन नहीं हो गया था, उसने समस्या में पॉजिटिव दृष्टिकोण डेवलप किया और उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। तो वो कला हमें डेवलप करनी है। किसी ने कहा है, डोंट से ओ गॉड आई हैव ए बिग प्रॉब्लम, हे भगवान मेरे पास तो बहुत बड़ी आफत आ गई है, बल्कि ये कहिए, क्या कहिए, हे प्रॉब्लम आई हैव ए बिग गॉड विद मी, हे आफत, हे समस्या, मैं तेरे से डरने वाला नहीं, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। चौथा कारण हमें है डर, इनसिक्योरिटी, कल क्या होगा, आज जो मेरे पास है क्या वो कल मेरे साथ रहेगा। ये डर हमें हमारी खुशी को छीन कर ले जा रहा है। हमें डर है कि आज मेरे पास जॉब है, कल जॉब रहेगी या नहीं, आज मैं करोड़पति हूं, कल को कहीं दिवाला निकल गया तो क्या होगा, आज मेरे साथ सारे मित्र संबंधी हैं, कल किसी ने धोखा दे दिया या कोई चल बसा तो क्या होगा। ये इनसिक्योरिटी, आज अनिश्चितता का टाइम है, कुछ भी किसी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी हो सकता है, तो वो डर हमें जीने नहीं दे रहा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि फियर, बहुत अच्छा मीनिंग बताया, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, 90% डर काल्पनिक होता है, जो हमारी मन की कल्पना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। हम बिना मतलब के सोच सोच के परेशान हो रहे हैं और असली में कुछ भी नहीं है। कभी ये ना सोचो कि कल क्या होगा, केवल एक बात याद रखो, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह विश्वास आपका उस अच्छाई को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यह आपने सोचना है। एक और कारण खुशी गायब होने का है कि हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं, इच्छाएं को के ऊपर जो व्यक्ति लगाम नहीं कर सकता उसके जीवन में खुशी नहीं आ सकती। हमारे पास साइकिल थी, हमने सोचा स्कूटर आ जाए तो हम खुश रहेंगे, स्कूटर भी आ गया, फिर सोचा कार आ जाए, अब कार भी आ गई, फिर सोचा नहीं कार तो छोटे वाली है, आजकल बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां चलती हैं, वो 20-25 लाख वाली हो तो बढ़िया रहेगा, अब वो भी आ गई, हैप्पीनेस फिर नहीं आई। इच्छाएं तो बढ़ती ही जाएंगी, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी पैदा हो जाएगी, दूसरी पूरी हुई तीसरी पैदा हो जाएगी। दुनिया में 7 समुद्र हैं और समुद्र के किनारे लाखों करोड़ों रेत के कण हैं, जितने रेत के कण हैं उससे भी ज्यादा हमारी इच्छाएं हैं। इसलिए किसी ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। हमारे अरमान बढ़ते जा रहे हैं, अरमान भी कई किस्म के हैं। एक तो है स्थूल चीजों के अरमान, एक अरमान है कि मुझे नाम मिले, मान मिले, शान मिले, लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, लोग मुझे कॉपरेट करें, लोग मुझे प्यार दें, एक ये भी है। आप सोचिए, जब हम ही दूसरों की मनोकामनाओं को पूरा नहीं कर सकते तो दूसरे हमारी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। एक और किस्म की इच्छा परेशान हमें करती है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो मैं कहता हूं वही ठीक है, सबको उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, यह इच्छा भी आपके लिए ट्रबल पैदा कर सकती है। इसलिए हद की इच्छाओं को त्याग दो, क्योंकि हद की इच्छाएं कभी भी आपको अच्छा बनने नहीं देंगी। इच्छाओं के नुकसान क्या हैं? अगर हम सोचें इच्छाओं के नुकसान क्या हैं, इच्छाएं आपके विचारों को छोटा बना देंगी, आपके मन को भटकाएंगी, दुखों और गमों के द्वार खोल देंगी और आपको परेशानी में डाल देंगी। इसलिए अगर आपने कोई इच्छा रखनी ही है तो ऐसी इच्छा रखो जिसको पाकर दूसरी किसी चीज को पाने की इच्छा रहे ही ना। वो कौन सी इच्छा होगी? वो है किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने की इच्छा, वो इच्छा है मनुष्य से देवता बनने की इच्छा, वो इच्छा है परमात्मा से मिलन मनाने की इच्छा। जिसका परमात्मा से मिलन हो गया और जो व्यक्ति देवता बन गया, उसके लिए किसी चीज की कमी है? तो आप बहुत बड़ी इच्छा रखो, छोटी छोटी इच्छाओं में ज्यादा दिमाग ना लगाओ तो खुशी आ जाएगी। आई प्लस वांट कांट बी इक्वल टू हैप्पीनेस। आई मीन्स ईगो, वांट मीन्स इच्छाएं, ये दोनों कभी भी हैप्पीनेस नहीं दे सकती। वी हैव टू ड्रा ए लाइन बिटवीन नीड एंड ग्रीड। बहुत अच्छा किसी ने कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, आप भी भूखा ना रहे साधु भी ना भूखा जाए। क्या कितना चाहिए हमें? इतना चाहिए कि हमारा भी गुजारा हो जाए और हमारे घर कोई आ जाए उसको भी हम खिला सकें, उससे ज्यादा इच्छा रहे ही ना। ये है दृष्टिकोण। छठा कारण ईगो प्रॉब्लम, हमारा अभिमान, जो मैं कहता हूं वही ठीक है, मैं आई एम सो एंड सो, मेरी बात मानी जानी चाहिए। इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति समझता क्या है, अनपढ़ गंवार और मैं पढ़ा लिखा, ये दुबला पतला और मैं ताकतवर, ये सब बातें ईगो की हैं। मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये क्या जानता है अपने आप को, ये सब अभिमान की बातें हैं। जहां अभिमान है वहां अपमान की महसूसता होगी ही होगी। अभिमान आपका अपमान दिलाएगा। जब हम छोटे होते हैं कितने अच्छे होते हैं। यहां भी बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, मैं उनको देखता हूं मजे से, कभी घूम रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो भी लेते हैं, किसी की परवाह नहीं है। जहां अपन कोई चिंता नहीं है, जहां दिल करा वहां चल पड़े, खेलना है तो खेल लिए, बैठना है तो बैठ लिए, कितनी अच्छी जिंदगी है। जब हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, हर 5-7 साल के बाद एक लेयर हम अपने साथ लगाते रहते हैं। अब मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली, अब मैं MBBS डॉक्टर बन गया, अब मैं कंपनी का MD बन गया, अब मैं CEO बन गया, अब मेरी शादी होगी, मैं हस्बैंड भी बन गया। ऐसी एक एक लेयर हम 5-7 साल में लगाते लगाते 40-50 साल आते आते हमारी हालत नारियल की तरह बन जाती है। नारियल का मतलब कि अब मैं रियल नहीं रहा, ना रियल, रियल नहीं रहा, अब मैं नकली बन गया हूं। नारियल कैसा होता है? बाहर से बहुत हार्ड, लोगों को लगेगा टाई पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अंदर से उसे लगता है सब बेकार है, देख ली दुनिया, अंदर जरा भी खुशी नहीं है। नारियल की तरह बाहर से टाइट, अंदर से सॉफ्ट। अब हमें नारियल से रियल बनना है। रियल बनने का मतलब है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, ये बात अपने मन में डालनी है। सातवां कारण है सेंसिटिव नेचर। हम बात बात पे बुरा मान जाते हैं, बात बात में फीलिंग की जो बीमारी है वो हमारे अंदर आ जाती है। आपने लाजवंती का पौधा देखा है कभी? छुई मुई जिसे कहते हैं, देखा है ना? उसे जब आप हाथ लगाते हैं, बच्चे या कोई भी हाथ लगाता है तो मुरझा जाता है। उसी तरह व्यक्ति जो सेंसिटिव नेचर का होता है उसे भी लोग तंग करते हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे और उस बात का वो बुरा मान जाएगा और उदास होकर बैठ जाएगा। तो हमें अपनी नेचर छुई मुई की तरह नहीं बनानी है। हमें कौन सा पौधा बनना है, कौन सा फूल बनना है? सूरजमुखी का। सूरजमुखी के फूल की तरह हमें खिलना है, जिसे देख के हर किसी का मन खिल उठता है, ऐसा सूरजमुखी बनना है। आठवां और लास्ट कारण जो मैंने यहां बताया है खुशी गायब होने का, हमारे पास्ट में किए गए कर्म, हमारे पाप कर्म, जो हमने जाने अनजाने में कुछ गलत कर दिए, उनका प्रभाव हमें वर्तमान में पड़ता है और हमें चाहते हुए भी खुश नहीं रहने देता। अगर आप डिफाइन करना चाहें किन किन कर्मों को पाप कर्म कह सकते हैं, वो सब कर्म जो देह अभिमान में आकर हम करते हैं, वो सभी कर्म जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन होकर हम करते हैं, वो सब पाप कर्म है। वो भूतकाल में किए गए कर्म हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। आप एक लंबी लिस्ट बना लीजिए अपनी, जिसमें आप नोट कीजिए कौन कौन से कर्म पाप कर्म हैं। चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की निंदा करना, इंसल्ट करना, पैसे लेकर वापस नहीं करना, झूठ बोलना, कितनी लंबी लिस्ट है। किसी की लेग पुलिंग करना, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है आप उसे आगे नहीं बढ़ने देते, वो भी बहुत बड़ा विकर्म है। एक बार भारत से एक शिप फॉरेन में जा रहा था, उसमें केंकड़े भरे हुए थे, तो जो शिप का मालिक था उसके पास वर्कर आए और कहने लगे, सर जो ढक्कन था ना जिसमें वो केंकड़े बंद किए हैं, वो तो हमने बंद ही नहीं किया, हो सकता है वो सारे केंकड़े बाहर भाग गए हों। तो मालिक कहता है, डोंट वरी, ये शिप इंडिया से आ रहा है और इंडिया की खासियत है कि यहां कोई व्यक्ति अगर ऊपर उठने लगता है नीचे वाला उसे खींच लेता है। तो ये बात केंकड़ों के ऊपर भी घटित हुई होगी। तो उस वर्कर ने बाहर जाके देखा तो कोई भी केंकड़ा बाहर नहीं निकला था, सभी अंदर ही अंदर थे। अगर कोई ऊपर जाने लगा भी होगा तो नीचे वाले ने उसे जरूर खींचा होगा। तो ये विकर्म, ये बहुत बड़ा विकर्म है। आजकल हमारे सारे धंधे पाप के बन गए हैं, पैसा कमा रहे हैं वो भी पाप के लिए, हर चीज पाप से जुड़ी हुई है। तो खुशी कैसे आएगी? खुशी तब आती है जब हमारे ऊपर पाप का बोझ नहीं हो, पुण्य की पूंजी हमने इकट्ठी की हो, तो खुशी आती है। अब हम बात करते हैं वो 11 हैबिट्स, 20 मिनट में अब हम उन हैबिट्स की चर्चा करेंगे, वो 11 हैबिट्स जो हमें हैप्पी रहने में मदद करती हैं। पहली हैबिट है Make a firm resolve to remain happy. Don't try to change others. जो व्यक्ति खुश रहता है कभी भी दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो उसमें समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसी को भी नहीं बदल सकता सिवाय अपने आप को। उसको इस बात की समझ है, वो कहीं भी इस चीज के पीछे नहीं भागता, और उसने अपने मन में एक पक्की चीज बिठा ली होती है कि मुझे खुश रहना है, हर हालत में खुश रहना है, मेरे पास चाहे कोई चीज हो ना हो लेकिन मुझे प्रफुल्लित रहना है। ये बात उसने पक्की अपने मन में बैठाई होती है और वो कभी भी हैप्पीनेस को पोस्टपोन नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि ये चीज हो जाए तो मैं हैप्पी रहूं। हम क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं जब हम छोटे थे कि मेरी इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, सीए बन जाऊं तो मैं खुश रहूं। एडमिशन भी हो गई, अब वो सोचता है पढ़ाई करूंगा, सारा सिस्टम है, अब मेरे को जॉब लग जाए तो मैं खुश रहूंगा। अब जॉब भी लग गई, खुशी फिर नहीं आई, अब वो सोचता है कि जॉब तो लग गई लेकिन बहुत दूर लगी है, कहीं नजदीक लगती तो खुश होता, वो भी हो गया। अब वो सोचता है क्यों ना मैं शादी कर लूं तो शायद खुशी आ जाए, अब मैरिज भी कर लेता है, थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी हैप्पीनेस आती है, असली वाली फिर नहीं आती। फिर लोग कहते हैं कि बच्चे हो जाएंगे ना तब आप खुश रहेंगे, अब बच्चे भी हो गए लेकिन खुशी फिर नहीं आई। अब वो सोचता है क्या किया जाए, कि बच्चे भी छोटे हैं ना मेरे, बहुत प्रॉब्लम करते हैं, रात को सोने नहीं देते, थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना फिर हम आराम से खुशी से रहेंगे, बच्चे बड़े भी हो गए खुशी फिर नहीं आई। अब सोचते हैं इन बच्चों को कहां पढ़ाएं, कहां एडमिशन कराएं, वही सारा दुष्चक्कर जिसमें हम फंसे थे पहले वही अब बच्चों का भी चालू हो गया, वही उनकी एडमिशन, वही जॉब, वही मैरिज, और इस चक्कर में हम पड़े रहते हैं। फिर सोचते हैं कि अभी तक तो मैं जॉब करता हूं, जॉब के दौरान तो कोई व्यक्ति खुश रह ही नहीं सकता, एक बार रिटायरमेंट होने दो उसके बाद फ्री होके मैं खुश रहूंगा, लेकिन रिटायर भी हो गए फिर खुशी नहीं आई। इस तरह जिंदगी पूरी हो गई और हैप्पीनेस नहीं आई, क्योंकि हम इसे पोस्टपोन करते गए। अब हमें लेसन लेना है कि खुशी कोई चीज प्राप्त करने के बाद नहीं मिलती, बल्कि जब उसका हम प्रयास कर रहे हैं उस चीज को प्राप्त करने का, उसी में ही खुशी है। उस खुशी को हमने आज ही पहचानना है। हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट इट इज द नेम ऑफ द जर्नी। सेकेंड हैबिट खुशनुमा लोगों की है, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था सेमिनार में, कि वो हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं, वो हर बात में क्या क्यों कैसे में नहीं जाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उनमें स्वीकार करने की आदत होती है, उस आदत के कारण वो आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी में तो चैलेंजेस सदा रहेंगी ही रहेंगी, हम जितनी जल्दी उनको एडमिट करें, जितनी जल्दी उनको एक्सेप्ट करें, उतनी जल्दी ही हम खुश रह सकते हैं। ये जिंदगी कोई संघर्ष का नाम नहीं है, ये कोई स्ट्रगल जोन नहीं है, युद्ध का मैदान नहीं है, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। हम सब यहां आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, हार हो जाए तब भी सेलिब्रेट कीजिए, जीत हो जाए तब भी सेलिब्रेट कीजिए, जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, इसे कभी भी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइए। कॉम्प्लिकेटेड तब बनती है जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं कर पाते कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये आदत डिवेलप करनी पड़ेगी। ये कहानी अगर आपने सुनी हो, इस व्यक्ति को अगर देखा हो, ये निक नाम का एक व्यक्ति है जिसका जन्म मेलबोर्न में 82 में हुआ था, और इस व्यक्ति की खासियत यह थी कि जब ये पैदा हुआ इसके कोई भी ना हाथ थे ना टांगे थी, माँ बाप बहुत हैरान कि सभी बच्चे तो ठीक पैदा हुए, ये एबनॉर्मल बच्चा कहाँ से हो गया। तो उस माँ बाप ने और उस बच्चे ने कितनी स्ट्रगल जीवन में सहन की होगी, लेकिन स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो बच्चा जिंदगी को आज एंजॉय कर रहा है और बहुत बड़ा स्पीकर कॉरपोरेट सेक्टर का बना है। उसने जिंदगी की ऑब्स्टिकल्स को चैलेंज के रूप में लिया और उनसे घबराया नहीं। आज वो बच्चा क्या है ये यहां बताया है, उसने बीकॉम किया हुआ है, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, कॉरपोरेट सेक्टर में जाता है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों के अंदर होप पैदा कर रहा है, एक अच्छी किताब भी लिख रहा है, नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज, ना हाथ हैं ना पैर हैं ना चिंताएं हैं। तो ऐसी जिंदगी हम भी जी सकते हैं, हमें तो भगवान का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, हमारे पास हर चीज है फिर भी हम चिंता में रहते हैं। देखिए जिनको कुछ नहीं मिला वो जिंदगी को हमसे बेहतर एंजॉय कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो क्या कहता है, गॉड इज यूजिंग मी जस्ट द वे आई एम एंड इन वेज अदर कांट बी यूज्ड, भगवान मुझे इस्तेमाल कर रहा है जैसा, मेरे जैसा इस्तेमाल दूसरा किसी का हो ही नहीं सकता। वो कहता है आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट विटनेस ऑफ गॉड्स लव एंड होप। इस जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, जिस चीज से हम डर रहे हैं उसको आप समझ लीजिए, उसके कारण को समझ लीजिए, आप जिंदगी का भरपूर मजा उठा सकते हैं। तो इस व्यक्ति से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसने हालात को एक्सेप्ट किया, उसको चैलेंज के रूप में लिया और वो व्यक्ति कामयाब व्यक्ति बन गया, तो हम भी तो बन सकते हैं। थर्ड हैबिट, ये जो खुश रहते हैं ना लोग, ये हमेशा नीड जोन में रहते हैं, ये ग्रीड जोन में नहीं जाते। नीड और ग्रीड, लोभ और लाभ, दोनों में अंतर है, उसे हमें समझना होगा। हैप्पीनेस इज नॉट ए डिपेंडेंसी, इट इज ए डिसीजन। ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड होने का नाम नहीं है कि ये हो, ये चीज मुझे मिले तो मैं हैप्पी रहूं, नहीं, चीज मिले ना मिले, जॉब रहे ना रहे, कार मेरे पास हो ना हो, मैं खुश रह सकता हूं। जितनी ज्यादा चीजें आप जिंदगी में इकट्ठे करेंगे, मोर पोजेशंस मोर कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर ट्रबल, मोर ट्रबल। जिसके पास कुछ नहीं है वो एंजॉय करता है, और जिसके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं सारी उम्र उनको संभालने में लगा रहता है, एंजॉय करने का टाइम नहीं लगता। तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है हमारी संतुष्टता, संतोष रूपी धन भगवान ने जो हमें दिया है उसमें हम खुश रहें। ये थर्ड हैबिट का नाम है, क्योंकि कंटेंटमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ योर हैप्पीनेस। संतुष्टता सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप संसार के सबसे बड़े राजा हैं। ए कंटेंटेड बैगर इज फार बेटर देन डिसकंटेंटेड किंग। अगर एक असंतुष्ट राजा भी है और एक संतुष्ट भिखारी है तो बढ़िया कौन है, वो भिखारी जो संतुष्ट है। एक और सुंदर बात कही है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है, संतोष धन। कईयों के तो नाम भी संतोष होते हैं, लोग संतोषी माता का व्रत भी रखते हैं, लेकिन जीवन में संतोष आ जाए उससे बढ़कर चीज कोई नहीं है। जिसके पास सेटिस्फैक्शन है ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस अर्थ, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति वही है। चाह गई चिंता मरी मनवा बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है हम ये एटीट्यूड डिवेलप करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए 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 ये समस्या पैदा करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो भगवान ने दे दिया। ये एटीट्यूड आपको हैप्पीनेस लाने में मदद करेगा। चौथी हैबिट, अगर आप खुद जीत गए हैं दूसरों को भी जीतने में मदद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज मच मोर देन विनिंग फॉर अवर सेल्व्स, इट इज हेल्प अदर्स टू विन। खुद जीतना बड़ी बात नहीं है, खुद कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं जीत प्राप्त करने की, वो आपको खुशी दिलाएगी। एक मोमबत्ती का क्या घट जाता है अगर वो दूसरी मोमबत्ती को जलाने में मदद करती है, और ही रोशनी बढ़ जाती है। तो हमारा जीवन भी यही होना चाहिए कि हमें सबको खुशी देनी है। खुशी उसको मिलती है जो खुशी का दान करता है। ये ऐसी चीज है जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। आपने दूसरे को दी, हैप्पीनेस इज लाइक ए इको, इको जब करते हैं जो आप बोलेंगे वही चीज आपके पास रिटर्न होके आएगी। उसी तरह आपने खुशी दी, आपको खुशी अपने आप मिलेगी। ये भी बड़ी अच्छी बात बताई है, लाइफ लाफ्स एट योर एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी, लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी, लाइफ सैल्यूट्स यू व्हेन यू मेक्स अदर हैप्पी। सलाम आपको कब मिलेगी, जिंदगी सलाम आपको कब करेगी, जब आप दूसरों को हैप्पी बनाने में मदद करेंगे। पांचवी हैबिट, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग दे मेक कंप्लीमेंट्स। जो खुश रहते हैं लोग वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, भगवान से शिकायत नहीं करते, शिकवे नहीं करते, वो भगवान का शुक्रिया करते हैं। वो ये नहीं कहते भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, देखो पड़ोसी को कितना कुछ दे दिया, मुझे पूछा तक नहीं। वो ये नहीं सोचते, वो ये कहते हैं कि जो कुछ मुझे भगवान ने दिया बहुत शुक्रिया भगवान का करते हैं। वो भगवान से कंप्लेन्स नहीं करते। भगवान ने, आप सोचो भगवान ने कितना कुछ हमें दिया है, दो आंखें दी, दो कान दिए, मुंह दिया, हाथ पैर दिए, सब कुछ दिया, और क्या चाहिए। लेकिन हमारी फितरत है कि जो हमारे पास नहीं है नजर वहां जाती है, जो मिला है उसकी तरफ हम नहीं देखते। आपके मुंह में 32 दांत हैं, किसी ने तो काउंट भी नहीं किए होंगे 32 हैं कि 28 हैं, कभी ध्यान ही नहीं जाता। आज एक दांत निकल जाए तो सारी रात सारा दिन आपकी जीभ उस टूटे हुए दांत को टटोलती रहेगी कि वो दांत कहां गया। ये हमारी नेचर है, लेकिन अब हमने ये नेचर डिवेलप करनी है कि हमें टूटे हुए दांत की तरफ नहीं देखना है, जो दांत हैं उनका एंजॉय करना है, उनसे काम चलाना है, कंप्लेन्स नहीं करनी है, कंप्लीमेंट्स करनी है, ब्लेम नहीं करना है, और अपने विचारों को बदलना है। लास्ट में जो लाइन लिखी है, खुशी का आधार खुशी की बातों का चिंतन, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर आप चक्की में नमक पीसें तो क्या बाहर निकलेगा, अगर चीनी पीसें तो चीनी। उसी तरह मन रूपी चक्की में, मन रूपी पटल में जो विचार हम चलाते हैं वैसी ही फीलिंग, वैसी ही महसूसता हमें होती है। अगर आप चिंतन करें गमों की, दुखों में बीती हुई घड़ियों का, कष्ट में बीती हुई टाइम का, तो आपका चेहरा प्रफुल्लित होगा। अगर आप चिंतन करें खुशी का, शांति का, आनंद का, दया भाव, ईमानदारी, अच्छे अच्छे गुणों का, दूसरों की भलाई का, आपके चेहरे में मुस्कान आएगी। अगर आप चिंतन करें बदले की भावना का, जेलसी का, नफरत का, गुस्से का, ईगो का, अटैचमेंट का, तो खुशी आएगी या नहीं आएगी। जो चीज आप निचोड़ेंगे, अगर आप गन्ने को निचोड़ेंगे तो एक कड़वा जहरीला पदार्थ बाहर निकलेगा, अगर आप अक के फूल को निचोड़ेंगे, अगर गन्ने को निचोड़ेंगे तो मीठा रस बाहर निकलेगा। जिस तरह के विचार आप मन में चलाएंगे वैसी ही महसूसता आपको होगी। हमें परचिंतन में नहीं जाना है, परचिंतन मच्छरों की तरह हमें काटता रहता है, चिंतन की धारा को बदलना है, स्वचिंतन करना है। मन में अच्छे विचार, ज्ञान का अध्ययन, मनन चिंतन करेंगे, खुशी अपने आप आएगी। और कंप्लेंस करने के बजाय कंप्लीमेंट्स करने हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है, भगवान की प्लानिंग के साथ अपनी प्लानिंग मैच करनी है। एक बार एक मास्टर जी अपने 3 चेलों के साथ बैठे थे, एक चेले ने कहा कि गुरुजी ये होना चाहिए, गुरुजी कहते यू आर राइट, तुम ठीक बात करते हो। दूसरा चेला आया, गुरुजी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, यू आर राइट, उसको भी राइट कह दिया। तीसरे चेले ने कहा गुरुजी आप बात बताइए, या तो ये राइट होगा या वो राइट होगा, दोनों कैसे राइट हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं यू आर ऑल्सो राइट। तो ये भावना हमारी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, हमें खुश रहने में मदद करेगी। सिक्स्थ हैबिट, जिंदगी में हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखिए, नेगेटिव साइड को ना देखिए। हर चीज के दो पहलू हैं, जो एटीट्यूड दृष्टिकोण की बातें यहां हो रही हैं, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव डिवेलप कर लीजिए, जिंदगी आपकी खुशनुमा बन जाएगी। सेवंथ हैबिट, अपने जिंदगी की कंपैरिजन दूसरों से ना कीजिए, अपने रोल का, अपने पार्ट को दूसरों के साथ तुलना मत कीजिए, बिकॉज यू आर द यूनिक पर्सन ऑन दिस अर्थ। आप जैसा दूसरा कोई भी व्यक्ति भगवान ने नहीं बनाया। आपको किसी से भी तुलना करने का अधिकार नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उस बंदे की जिंदगी की जर्नी कहां से शुरू हुई, कहां एंड हुई, उसकी कर्म गति को आप नहीं जानते, तो उससे आप तुलना नहीं कर सकते। मान लो हमारी तुलना करने की आदत इतनी प्रबल है, आप किसी के घर में गए, ड्राइंग रूम में बैठे, आपने देखा बहुत बढ़िया सोफा सेट लगा है। अच्छा, आप खिड़कियों की तरफ गए, ये बहुत बढ़िया कर्टेन्स लगे हुए हैं, आप उससे प्रभावित हो गए, फिर अपने घर के याद किए तो थोड़े कम हुए, तो आप उदास हो जाएंगे, आपको लगेगा बहुत बड़ा आदमी है, हम तो छोटे ही हैं। तुलना करोगे, आपको या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। इसे किसी से भी तुलना नहीं करनी है, हम यूनिक हैं। हमें जो रोल, हम जैसा सुंदर कलाकार इस रंगमंच पे नहीं हो सकता दूसरा, हम बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं। किसी से तुलना नहीं करें, सदा संतुष्ट रहें, जो कुछ हमें मिला उसमें संतुष्ट रहें। इस दुनिया में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ये केवल हमारी सोच है। पक्का मानते हैं इस बात को? यू हैव नो आइडिया व्हाट देयर जर्नी इज ऑल अबाउट। हां, अपनी ही जिंदगी हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है, यही बात है। हमें अपनी जिंदगी दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरों का अलग सिस्टम, आपका अलग सिस्टम, हो सकता है उन्होंने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की, आपको क्या पता। हमने बॉटम से स्टार्ट की, वो पहले 20 मीटर पे थे, तो वो आगे बढ़े रहेंगे। इसलिए दूसरे से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो मैं बात बता रहा था, एक बार पांच उंगलियों में झगड़ा हो गया, तो एक उंगली कहे मैं बड़ी, दूसरी कहे मैं बड़ी। सबसे पहले ये उंगली थी, ये कहती मैं बड़ी, कहते तुम क्यों बड़ी, कहती श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो किस पे उठाया था, इसी पे उठाया था, कहती मैं बड़ी हूं। अब नंबर दो वाली कहती मैं बड़ी, कहती तुम क्यों, कहते जब किसी लड़ाई में जाते हैं तो तिलक किससे लगाते हैं, इसी से लगाते हैं, मेरी वैल्यू है। ये कहे सांच को आंच क्या, मैं तो देखने में बड़ी इसलिए मैं बड़ी। ये कहे जितने भी गुरु पैगंबर आए, परमात्मा को कहा गॉड इज वन, किससे कहा, मेरे से तो कहा मैं बड़ी। अंगूठा चुपचाप सुन रहा था, कहा उसने, सोचा ये तो मैं तो पीछे रह गया। वो कहता जी मैं हूं असली बड़ा, कहते तुम क्यों बड़े, कहते जब किसी को अंगूठा पढ़ना लिखना नहीं आता तो अंगूठा कैसे लगाते, तो मेरी जरूरत पड़ती है। अब जज के पास गए, जज ने कहा अब क्या किया जाए, कैसे फैसला किया जाए कि कौन बड़ा। तो जज ने उन्हें काम दिया, बूंदी का थाल दे दिया, थाली में बूंदी डाल के कहते बनाओ लड्डू। अब अकेले अकेले तो किसी से लड्डू बने ना, अब जब इकट्ठे सारी उंगलियां लगे तो लड्डू बने। इसलिए संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, हर एक की वैल्यू है। जहां सुई काम आती है वहां सुई आती है, जहां तलवार काम आती है वहां तलवार, जहां पर आपने AK-47 चलानी है वहां वही चलेगी, जहां बोफोर्स तोप चलानी है वहां वही चलेगी। इतने नजदीक कोई मेरे हो और मैं तोप का गोला 40,000 का एक चला दूं तो मेरी बेवकूफी होगी ना। और कोई व्यक्ति यहां से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे, कारगिल की पहाड़ी पे है, मैं AK-47 चलाता रहूं तब भी काम नहीं चलेगा, वहां तो बोफोर्स का गोला ही दागना पड़ेगा। उसी तरह हर चीज की इंपॉर्टेंस है, ये हमें समझना है। लास्ट में दो तीन हैबिट्स और रह गई। हैबिट 8, एंजॉय ईच एंड एवरी एक्शन यू परफॉर्म। वो लोग, खुश रहने वाले लोग, हर चीज को एंजॉय करते हैं। अगर वो ऑफिस में क्लर्क का काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं तो खाना कुकिंग को एंजॉय कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग को एंजॉय कर रहे हैं, लेक्चर देने के लिए कह दिया तो लेक्चर देना एंजॉय करो, किसी ने कह दिया कि लेक्चर सुनो तो लेक्चर सुनने में एंजॉय करेंगे। जो काम आपको मिला है आपसे बढ़िया कोई और कर नहीं सकता, तो बेहतर है कि आप उस काम को एंजॉय कीजिए, लेकिन एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर। डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनने का मतलब है अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट समझिए, अपने आप को समझिए कि मैं केवल निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूं। तब आपको उस कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक डॉक्टर के पास कोई ऑपरेशन कर दे, जिंदगी बच जाए तो वो लड्डू नहीं बांटता, कोई मर जाए तो रोने नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो डिटैच होकर कर्म करता है। तो हमें वैसा ही कर्म करना है, रिजल्ट का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। और ये हम तब कर सकते हैं, हर काम को हम एंजॉय तब कर सकते हैं जब हम हर काम को प्यार करें, हर काम से प्यार करें, तभी ये चीज हो सकती है। हम नाइन्थ हैबिट, वो लोग सॉल्यूशन पर्सनैलिटी होते हैं, कभी भी प्रॉब्लम पर्सनैलिटी नहीं बनते। और प्रॉब्लम्स हैं क्या वैसे? दीज आर द क्रिएशन ऑफ वीक एंड नेगेटिव माइंड। जिसका मन कमजोर है वही समस्या पैदा करता है। तो खुश रहने वाले लोग हमेशा सॉल्यूशन का अंग बनते हैं, ना कि समस्या का अंग बनते हैं। वो समस्याओं के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। और दसवीं हैबिट उन लोगों की है कि वो ज्यादा नहीं सोचते, ज्यादा सोचने से बचते हैं। हम सब क्या करते हैं, कोई बात हो जाए उसकी PhD स्टार्ट कर देते हैं, रिसर्च चालू हो जाती है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हर चीज व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हाउ, ये सारे क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देते हैं और हर घटना पर, हर परिस्थिति पर सोचना शुरू कर देते हैं। जिन चीजों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। और ये चीजें हमें ट्रबल में डालती हैं। हमारी मन की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं जब हम टू मच सोचते हैं। हम अपने आप से पूछें कि हर बात पे सोचना क्या जरूरी है? दुनिया की हर बात के हम ठेकेदार हैं क्या? हम दुनिया के जनरल मैनेजर लगे हुए हैं कि हमें हर चीज के ऊपर सोचना है? जो है जनरल मैनेजर भगवान, वो तो सोचता नहीं, आराम से ऊपर से बैठा रहता है, देखता रहता है दुनिया की हालात क्या चल रहा है। कोई पाप कर दे तब नहीं इंटरफेयर करता, कोई अच्छा काम कर दे तब नहीं इंटरफेयर करता, न्यूट्रल वे से देखता रहता है। हमें भी वैसा ही बनना है। उसके लिए हमें क्या सोचना होगा? ABCD फार्मूला लगाना होगा। याद रख सकते हैं ABCD फार्मूला? ABCD फार्मूला मीन्स मुझे हर बात में, हर घटना में नहीं सोचना है, कुछ चीजों को मुझे अवॉइड करना है। ए मतलब अवॉइड, और बी मीन्स बाईपास। जैसे बाईपास रोड होता है ना, शहर में जाने के बजाय बाईपास रोड से निकल जाओ, जहां समस्याएं हैं, जहां कुछ गड़बड़ है, वहां से निकल के किनारे से निकल जाओ। तीसरा मीन्स कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको कैंसिल करनी पड़ेंगी, एकदम कैंसिल, सी फॉर कैंसिल। एंड डी मीन्स डू योर मेन वर्क, जो आपको काम मिला है उसको एंजॉय कीजिए, उसको पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी दिल के साथ कीजिए, तो आपको कामयाबी मिलेगी और आपका मन मुस्कुराएगा। प्रेजेंट में जीना सीखिए, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट का आनंद उठाइए। जो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, सुनिए हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां, जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, देखो कितने उसके साथी छूटे, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, गड़े मुर्दे हमें नहीं उखाड़ने हैं, जिन मुर्दों को एक बार दफना दिया बार बार उनको नहीं उखाड़ना है। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया, मुझे वर्तमान का आनंद उठाना है। दुनिया बीत, जो बीत गया सो बीत गया, उसके पीछे हमें नहीं जाना है। हम क्या करते हैं, पास्ट में ज्यादा सोचते रहते हैं, पास्ट का पोस्टमार्टम करते रहते हैं और फ्यूचर का ऑपरेशन करते रहते हैं। जो यूथ लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, हम ये करेंगे, वो कल्पना में जीते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं, वो फ्यूचर उसमें रहते हैं, पास्ट में रहते हैं, हमारे जमाने में तो ये था, हमारे जमाने में तो ये था, अब पता नहीं कौन सा जमाना आ गया। लेकिन वर्तमान का कोई आनंद नहीं उठाता। पास्ट एक सपना है, फ्यूचर एक कल्पना है, केवल वर्तमान अपना है। आप सोचिए, क्या जो बीत गया हम उसको चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज द पास्ट? तो उसके बारे में बार बार सोचने से क्या फायदा? उससे लेसन ले लीजिए एक लाइन में कि अब ये हुआ तो इससे मेरे को ये सीख मिली। अच्छा, क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं? होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा तो हम भविष्य की भी चिंता क्यों करें, क्यों ना हम वर्तमान के हर पल का हर क्षण का आनंद उठाएं। पास्ट एक हिस्ट्री है, फ्यूचर एक मिस्ट्री है, केवल प्रेजेंट ही विक्ट्री दिलाएगा, इसलिए प्रेजेंट का हम आनंद उठाएं। लास्ट हैबिट, जो खुश रहने वाले लोग हैं वो अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करते हैं। दुनिया के लोग जब उठते हैं उनकी मुलाकात होती है समस्याओं से, और अच्छे खुश रहने वाले लोग जब उठते हैं उनकी मुलाकात होती है भगवान से। वो भगवान को प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लेते हैं, भगवान से हर समस्या का हल सवेरे सवेरे लेते हैं। सवेरे उठते ही 10 मिनट हमारे जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत होता है। जो विचार आप उस वक्त करेंगे वैसा ही जीवन आपका बीतेगा, इसलिए सवेरे उठते ही अच्छे विचारों की खुराक अपने मन को दीजिए और ये सोचिए कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, भगवान ने मुझे वरदान दे रहे हैं सवेरे उठ के, और कह रहे हैं कि बच्चे तुम सदा खुश रहो, खुशी तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता, ये खुशी मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं, एक सौगात के रूप में दे रहा हूं, आपने इस सौगात को संभाल के रखना है और अपने जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। तो सवेरे उठ के भगवान को थैंक्स कीजिए, उसके साथ मुलाकात कीजिए और अच्छे विचार अपने मन में लाइए। और लास्ट में एक बात याद रखिए, आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद आपने एक बात याद रखनी है कि मुझे इस संसार में भगवान ने भेजा है खुशनुमा जीवन व्यतीत करने के लिए। कुछ भी हो जाए, कोई मेरी निंदा करे या स्तुति करे, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, पैसे हो या ना हो, लेकिन मुझे खुश रहना है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, भारत की ये कहावत। इसके साथ एक चीज और ऐड कर लो, प्राण जाए पर मेरी खुशी ना जाए। तो आज से आपने ये संकल्प करना है कि मुझे खुश रहना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।